ஓம் சாந்தி. பாபா கி முரளி. யாத் கரோ ஆஜ் கல் உசே பஹலே ஏக் விசேஷ் லஹர் சல்தி ஆ ரஹி ஹை ஜோ முஜே பஹுத் யாத் கர்தே ஹை மே பி. கேசா ஆத்மா ஔர் பரமாத்மா கா சுத் பிரேம் தினை சப் சார் தின் பஹலே யோக அர்த்தாத் ஆத்மா ஔர் பரமாத்மா கா சுத் பிரேம் நிர்மல் பிரேம் தேஹ வாலா நஹி மோஹ வாலா நஹி சுத் ப்யோர் லவ் ஆத்மா ஔர் பரமாத்மா கே பீச் மே. मैं सोच रहा था ये सुंदर अवसर हम सबको मिला है भगवान को राजी करने का, मिला है या नहीं? भगवान राजी होकर आया है, परंतु बहुत राजी कर लेना, वो अपना सब कुछ हम पर कुर्बान कर दे. आ गया है मुरलियों में, बार बार आता है, तुम मुझे अपना सब कुछ दे दो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा. आ रहा है ना मुरली में, साहूकार नहीं दे पाते हैं, गरीब दे देते हैं, गरीब जल्दी बेघर बन जाते हैं. बेघर की बात की ना, वैराग्य. तो भगवान को राजी करना, इसमें बहुत अच्छी बात थी. ये सभी चीजें हमें स्वीकार करके अपना लेनी है, जो मेरे बहुत मददगार बनते हैं. मैं उन्हें चुन चुन कर सर्च लाइट देता हूं, चुन चुन कर माना विशेष अटेंशन के साथ सबको. जनरल वाइब्रेशंस उसके फैलते ही हैं जब वे आते हैं, लेकिन चुन चुन करुणात्माओं को जो उसके बहुत मददगार बनते हैं. सोच ले, हम भगवान के दिल को जीत सकते हैं, हम उसको आकर्षित कर सकते हैं, उसका ध्यान हमारी ओर चला आए, वो हमारा ध्यान रखने लगे, वो हमारी संभाल करने लगे. ये भी शब्द बहुत अच्छे थे पीछे, बाप रूप से मैं तुम्हारी संभाल करता हूँ. नोट करते हैं ये बातें, मुरलियों में आती हैं, लिख लेना चाहिए साथ साथ. बाप रूप से तुम्हारी संभाल करता हूँ. माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं ना, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं तो पढ़ाना. मैं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाता हूँ, सत्य ज्ञान देता हूँ. जिस सत्य ज्ञान की तुम्हें तलाश थी, मूल्यों को हम एंजॉय किया करें. भगवान डायरेक्ट हमसे बात करता है, बात है ये भगवान की. मनुष्यों की बातें तो सुनी, गुरुओं की भी सुनी, भगवान डायरेक्ट. और आज क्या था, मुझसे नजर मिलाओ तो तुम. और नजर मिलाने के पहले भी एक शर्त थी, देही अभिमानी होकर नजर मिलाओ. नजर मिलाओ माना दृष्टि लो. अगर हम आत्मभिमानी होकर बाबा की दृष्टि लेते हैं, बाबा माना स्वयं भगवान, कोई देहधारी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, जो सुप्रीम है. आज भी कहा सुप्रीम माना संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी, सदा पवित्र, अविनाशी रूप से पवित्र और निर्विकारी. उसकी जब दृष्टि आत्माओं को मिलती है तो सभी निहाल हो जाते हैं. निहाल के दो अर्थ बताए, सदगति होना और तुम्हें बादशाही मिल जाती है. अब क्या हो, बेहाल हो गए हो. आज बहुत अच्छे सब थे, आत्मा में कोई दम ही नहीं रहा है. जैसे बैटरी आपके फोन की 5% पे आ जाए, कहेंगे ना दम ही नहीं है, अब बात क्या करेंगे, पता नहीं एक मिनट में खत्म हो जाए, दम ही नहीं रहा है। तो बाबा हम सभी को शक्तियां देते। और एक ऐसा ही और सुंदर महावाक्य आया है अभी अभी, पवित्रता में ही ताकत है। तुम पवित्र बनते हो तो बहुत ताकतवर हो जाते हो। तो अब दम भरने आया है स्वयं भगवान, अपनी शक्ति सेना में हमें भरना है। वो तो देने आ गया है, हमें लेना है। और एक अव्यक्त मुरली की कल की, ऐसे तो वैराग पर मुरली थी, और वैराग की गहरी परिभाषा दी बाबा ने, मोटी नहीं, स्वभाव संस्कार से उपराम, विकारों से परे उनसे वैराग्य, गहरी बातें, अपनापन खत्म, सब कुछ तेरा, ये फाइनल वैराग्य की परिभाषा, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा, ऐसा वैराग जिसमें सूखापन नहीं है। बाहर लोग वैराग करते उदास, उदासी, उदासी पंथ भी है एक, उदास, ऐसी उदासी यहां नहीं, हमारा वैराग्य परमानंदकारी है। लेकिन एक बड़ी गहरी बात थी, उस पे सबको कार्य करना है। चारों सब्जेक्ट में फुल तो फुल स्टॉप लगेगा, संकल्पों को फुल स्टॉप, बंद हो जाए संकल्प व्यर्थ, जब चाहे मन को शांत कर ले, मन को भिन्न भिन्न स्थितियों में लगा दे, ये तब होगा जब चारों सब्जेक्ट में फुल होंगे। कभी बाबा ये भी कहते हैं, शक्तियों का स्टॉक फुल तो लगेगा फुल स्टॉक। संकल्प किसी किसी के इतने तेज चलते हैं कि उनको फुल स्टॉप लगाना बहुत कठिन हो जाता है। लगाना अवश्य है, क्योंकि नहीं तो आजकल दुनिया में यही बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। दो युवक आज भी मिले अपनी माताओं के साथ, यंत्रों में चल रहा ना खेलने वालों का प्रोग्राम, स्पोर्ट्स का काफी अच्छे अच्छे है, युवक बच्चे ज्यादा है। तो दो माताएं अपने बच्चों को लाई, बहुत पढ़ते हैं। मैंने कहा तो अच्छी बात है, माताएं तो परेशान होती हैं बच्चे पढ़ते ही नहीं। नहीं बहुत पढ़ते, माना इधर उधर की किताबें बहुत पढ़ते हैं। मैंने पूछा क्यों भाई, लंबा युवक लंबा। मैंने पूछा क्यों इतना पढ़ते हो, मुझे सारी जानकारी प्राप्त करनी है। बच्चे बैठे दो चार इधर भी, समझ ले जितनी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के चक्कर में पड़ेंगे उतना ही मन कंफ्यूज होगा, डिस्टर्ब होगा, और ये ले जाता है मनुष्यों को डिप्रेशन की ओर। इसलिए युवकों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, वो मोबाइल से भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अगर उन्हें राजयोग के बारे में जानना है तो फटाफट यूट्यूब पे राजयोग, किसी सन्यासी ने लिख दिया है राजयोग बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगा, जंगल में जाओ गुफा में बैठो। अब बेचारा कहाँ जाए गुफाओं में, पता ही नहीं गुफा बनी कहाँ हुई है, खाएंगे कहाँ से, वहां सोएंगे कहाँ, चीता आ गया तो क्या करेंगे। दूसरा खोला, फलाने सन्यासी ने कहा हजार सन्यासियों में किसी एक को राजयोग प्राप्त होता है, निर्संकल्प स्थिति मिलती है, तो चाहिए भी बेकार हमसे नहीं होगा। किसी ने कहा ये प्राणायाम करो ये आसन करो राजयोग यही है, किसी ने कह दिया राजाई से रहो ये राजयोग है। अब बेचारे युवक परेशान, कौन सा है आखिर राजयोग। ये हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा युवकों में, खास जो सब कुछ जानना चाहते हैं। और भगवान ने आकर आत्मा के बारे में कितना सहज ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो, खत्म हो गया काम। इसी बात को जानने के लिए शास्त्रों में हजार बातें, हजार तर्क, कंफ्यूजन। ऋषि मुनि महामंडलेश्वर तपस्वी जान ही नहीं पाए मैं कौन, यही तो जानना है मैं कौन, यही तो नहीं जानते। तो सारे वेद शास्त्र पढ़ के क्या किया तुमने, क्यों टाइम वेस्ट किया? अगर यही नहीं जाना मैं कौन और भगवान कौन, जीवन ही वेस्ट कर देते हैं लोग। तो कितना अच्छा ज्ञान मिला है, नशा है। मैं बाप रूप से तुम्हारी संभाल करता हूँ, टीचर रूप से तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे देता हूँ। ज्ञान सचमुच सहज है, दौड़ दो चार सहज बात। और कोई लिख दे बड़ा विद्वान, नहीं चार नहीं होते, पांच, सारी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। दूसरे लोग सिद्ध करने पे लग जाएंगे, पांच नहीं चार। कुछ लोग सिद्ध करने पे लगेंगे, चार नहीं पांच, आखिर छह ही हो जाएंगे, चार खत्म हो जाएगा। ये गड़बड़ हुई ज्ञान में। इसलिए बाबा ने जो संपूर्ण सरल परफेक्ट ज्ञान दिया, उसको अपने चिंतन में लाकर उसे अपनी शक्ति बना लेना है। मैं आज विशेष रूप से सबका ध्यान खिंचवाता हूँ, जो मेरे बहुत मददगार बनते हैं। भगवान वाच, मैं उन्हें बहुत प्यार से देखता हूँ। बड़ी नेचुरल बात है ना, आपके बच्चे भी कोई बहुत अच्छे हों तो जब आप उन्हें देखेंगे अलग दृष्टि होगी। बाबा ने कहा जो मेरे बहुत मददगार बनते हैं मैं उन्हें बहुत प्यार से देखता हूँ। तो भगवान को हम आकर्षित करेंगे, करेंगे या नहीं, सब कुछ देकर जाए, कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, सारे वरदान हमारे। अब हमें उसके मददगार बनना है। तो न केवल वो हमें प्यार से देखे लेकिन सर्च लाइट भी देता रहे, दृष्टि देकर हमें निहाल करता रहे। निहाल तो कर दिया, हो गए या नहीं निहाल, पहले दिन हो गए। यही तो विशेषता है ज्ञान की, बाबा के बने उसके पास आए, निश्चय हुआ, योग लगा और निहाल हुए, सत्य की खोज पूरी हो गई। या ढूंढ रहे अभी भी किताबों में सत्य की धरे, थोड़े पढ़ के तो देख ले शिव पुराण क्या क्या कहा शिव के लिए, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय कंफ्यूजन के। पहला कंफ्यूजन तो कौन सा है, शिव और शंकर एक, समझ में नहीं आता कुछ किसी की, पता है ये मान्यता क्यों चली? क्योंकि शिव है निराकार और जिस तन में वो आए ब्रह्मा वो है साकार, बस इससे गड़बड़ हुई। अब साकार ने तपस्या भी की शंकर जैसी और निराकार पूरी तरह मुक्त ऊपर, तो कंफ्यूजन हो गया संसार में, ये या ये, तो एक ही है, छोड़ो झगड़ा, एक ही है। झगड़े मिटाने के लिए ये मान्यताएं बन गई। तो हम बाबा के मददगार बनकर उससे सर्च लाइट लें, हमें लेना न पड़े वो देने लगे, सवेरे हम सोना चाहें वो सोने न दे, उठा दे, तुम्हें देने आया हूं तुम क्या कर रहे हो, जगो लो, बाद में सो लेना, सतयुग में चल के जितना चाहिए अब जग जाओ। तो हम बाबा के मददगार बने। मदद अलग अलग तरह की है। बहुत भाई बहने सेंट्रल से आए हैं, कोई बाबा की सेवाओं में अपनी जगह दे देता है, कोई सेवा केंद्र बनाकर दे देता है, कोई और तरह की मदद कर देते हैं सेवाओं में। सरकार भी बहुत मदद करती है आजकल हम लोगों को, एक जगह तो बहनों को 5 एकड़ जमीन दे रही सरकार, सभी धार्मिक संस्थाओं को दे रही थी अच्छी अच्छी जगह। अब बहन जी इसलिए परेशान, मैं 5 एकड़ क्या करूंगी। मैं भी गया उनकी जमीन देखने, मैंने बहुत समझाया, बहन जी ले लो बगीचा बना लेना, काम आएगा भविष्य में। उसको भारी लगा, 2 एकड़ ली। वो गवर्नमेंट के ऑफिसर भी सोचे कैसी ये व्यक्ति है, सब तो 5 की बजाय 10 मांग रहे, ये 2 ही कह रही है। सरकार के भी अच्छे अधिकारी बहुत मदद करते हैं, बाबा के बच्चे कोई ज्ञान में नहीं होते भी मदद करते हैं, भावना रहती है। तो इससे भी भगवान की नजर उन आत्माओं पर आती है, कोई ढंग से मदद करता है, कोई अपनी किसी विशेष योग्यता से। और कोई यज्ञ में, अब हम यहाँ यज्ञ में बैठे हैं, यज्ञ की सेवाओं को फलीभूत करना, यज्ञ को निर्विघ्न बनाकर रखना, कहीं भी कठिनाई आ जाए उसको पार करना, कोई विशेष सेवा हो जाए उसमें लग जाना, अपना सब कुछ भूल कर, ये बाबा का ध्यान हमारी ओर आकृष्ट करने की विधि है। सेवा तो ऐसी है, हम नहीं करेंगे तो बोलो और कोई करेगा। ये तो बाबा का काम है, सारा संसार विरोध करने लगे, उसको तो संसार को स्वर्ग बनाकर ही जाना है, कोई शक्ति उसको रोक नहीं पाएगी। हम बीच बीच में अपना हिस्सा ले लेते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है ना, उसने हमें अपने काम में चुन लिया, सबको नहीं चुना। वो किसी धनवान को भी चुन सकता है कि यज्ञ को एक दिन में ही भरपूर कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, उसे पता है। क्या पता है बताओ, धन के बारे में है? गरीबों का सफल करना है, क्योंकि आप सब माताएं जो यहाँ सेवा के लिए बैठी हैं, गरीब तो नहीं है, मैं गरीब नहीं कहूंगा आपको, लेकिन आपके अंदर भावनाएं और प्यार बहुत है या नहीं। उससे जो कुछ सेवाओं में अर्पित किया जाता है भगवान के पास, उसका महत्व है, किसी के करोड़ों का नहीं। ठीक बात है या नहीं? किसी के करोड़ों का नहीं, देने के पीछे भावनाएं प्यार, किस लक्ष्य को रख कर दे रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। मैं मोटी सी बात सुनाऊं, मैं कुछ सोच के नहीं आया, ऐसे ही सुना रहा हूं। कोई यज्ञ में देते हैं, बहन जी 50,000 रुपए यज्ञ में देते हैं, फिर चेक करते हैं, बहन जी ने 50,000 का क्या किया, कुर्सी बहुत अच्छी खरीद ली, प्लास्टिक से भी तो काम चल जाता था, सोफे बहुत अच्छे बना लिए हमारे पैसे से, अब नहीं देंगे इनको, तो वो जो 50,000 था वो 4 जीरो तो खत्म हो गई, आगे की 5 रह गए बस। क्योंकि पहले तो उसको ये संकल्प रहा, मैंने बहन जी को दिया, पहली गलती। और फिर क्या किया पैसे का, अब कोई दान करे और सोचता रहे मेरे 10 रुपए का इसने क्या किया, देख के तो चलेगा काम? ये देने की मर्यादा नहीं है, ये सहयोग नहीं होता, इसमें डिस्टरबेंस पैदा होते हैं। देने के लिए तो नियम है, एक हाथ दे दूसरे को भी पता न चले, मतलब देने की भावना से नहीं। बाबा ने कहा ना, कई सोचते हैं बाबा को देते हैं, क्या कहा इसके लिए, ये बाबा की इंसल्ट है, बाबा के लिए हमारे 1,000 करोड़ भी कागज हैं। 1,000 करोड़ का तो एक छोटा सा हीरा आपके मकान में जड़ा हुआ एक केवल, और ऐसे न जाने कितने होंगे। तो जिसने हमें सब कुछ दिया है उसके कार्यों में लगाना, उसको नहीं देना है, उसको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। तो धन के पीछे भी गति बहुत गुह्य है। अगर मन में भी संकल्प रहता है, ये तो हुई बाहर की बात, मन में मैंने इतना दिया, तो वो भी जितनी बार संकल्प करेंगे कम होता ही जाएगा। दिया और भुला दिया, ये है श्रेष्ठ स्थिति। तो हम बाबा के कार्यों में पूर्ण सहयोगी बने, इस महान यज्ञ को सफल करें, इसको निर्विघ्न बनाएं, इसमें विघ्न न डालें। कई विघ्न डालने वाले बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं यज्ञ को खत्म करेंगे, हम दिखाएंगे इनको हम भी क्या हैं। बेचारे खुद ही खत्म हो जाते हैं। अब कोई पहाड़ से टकराए, सिर मारे के तोड़ूंगा तुझे, बहुत पहाड़ है ना हमारे सामने, कोई सिर पट के पहाड़ों में के तुम्हें तोड़ूंगा। ऐसा ही हाल लोगों का होता है। ये ज्ञान जब मलिन हो जाता है, ज्ञान के ऊपर मलिनता की चादर आ जाती है, तब ये सब होता है। बुरे संग में एक कहानी सुना दो सच्ची, बिना नाम धाम के कोई कहीं अच्छा पैसा देकर बड़ा केंद्र बनवा रहे थे, किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया, नहीं करना है। उसने कहा नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, नाराज भी हुआ, नहीं करना है। दो थे वो सेठ, मेरे पास लाए, अभी की घटना है, लास्ट बाबा के टर्न की, मेरे पास लाए, थोड़ा सा बता दिया कि भाई ये बहुत बड़ी जगह बना रहे थे सेवा के लिए, किसने इनको बहका दिया है, अब ये नहीं दे रहे। तो मैं तो उनसे ऐसे ही बात की, मुझे इससे लेना देना भी क्या, दे तुम्हारा भाग्य बनेगा, नहीं दोगे धूल में जाएंगे सब। तो ऐसे ही बात उन्होंने ही शुरू कर दी। मैंने उनको कहा देखो 2020 तक और बाबा बहुतों का धन स्वीकार करेगा, 2020 के बाद धन देने वाले इतने आ जाएंगे कि चाहे आप उनको जला के रोटी पका लेना, इतने आएंगे, बहुत आएंगे, लिया ही नहीं जाएगा। बाबा ने बताया हुआ, लेंगे ही नहीं। बाबा ने कहा मैं भर के क्यों दूंगा उन्हें, क्यों लो उनका, मुझे गरीबों की पाई पाई से यज्ञ को सफल करना है। बच्चे सुनते ही वो जग गए, बना देते, मुझे पता चला बना रहे हैं 5 मिनट की मुलाकात से, लेकिन इसमें उनका भाग्य कट तो गया। क्योंकि जो संकल्प मनुष्य एक बार कर ले उससे फिरना नहीं चाहिए। किसी के कहने से अपने श्रेष्ठ विचारों को, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं को, अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों को छोड़ नहीं देना चाहिए। माताएं गंभीर हो गई हैं, क्या भारी बात है? नहीं, माताएं तो सब करती है ना प्यार से, अपना भी बचा के यज्ञ में देती हैं। बाबा सब सुनाया करते थे, हम लोग जब छोटे यज्ञ में थे किचन में, तो उस समय कुछ अलग प्रथाएं थी, तो माताएं बहुत कुछ लाया करती थी पोटली बांध के। जैसे एक साड़ी पुरानी ली, उसमें 1 किलो चावल बांधा, 1/2 किलो चीनी, 2-4 हल्दी की गांठे, 1/2 किलो दाल बांधी, और उसमें 4 आने 8 आने भी रख दिए। और हम लोगों का काम होता था उन्हें जो सामान आया सेट करना, भाई साफ नहीं है तो अलग कर देना, नहीं तो मिला देना, चावल चावलों में, दाल दालों में। हम सोचते थे देखो वो लाल मिर्च भी लाती थी बड़ी बड़ी बांध के। तो बाबा ये सब देख के बड़े खुश होते थे, भावनाएं हैं ना इनके पीछे। तो हम बाबा के इस महान कार्य में सहयोगी बने। थोड़ी गहरी बातों पर भी ध्यान दें सहयोग की। अगर कोई व्यक्ति रात को देर तक मोबाइल पर रहता है, इधर उधर की चीजें देखता है, उसमें सवेरे 8 बजे उठ के सीधा नाश्ते पर आ जाता है, फिर अपनी सेवा करता है। वो बाबा का मददगार है या उससे यज्ञ के वाइब्रेशंस कमजोर बनते हैं, सोच लो। और आजकल मोबाइल पे ऐसी खराब चीजें हैं कि अगर देखने का रस लग गया तो जीवन नष्ट। मेरे पास तो क्योंकि युवक आते हैं ये सब लेकर, कल ही एक आया, इसी ग्रुप में आया हुआ है, 1 साल से ज्ञान में है। कहा भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, 6 मास पहले मैंने ऐसी गंदी चीज नेट पर देख ली, उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आती, कितना बड़ा लॉस हो गया, नींद ना आना कितनी बड़ी सजा होती है। क्या करूं मैं? अब मैं तो उस सबको स्पिरिचुअल ये ज्ञान योग के तरीके सिखाता हूं थोड़े थोड़े, पर मैंने उसे कहा अब अगर तुम सुख भरा जीवन जीना चाहते हो तो ये बड़ा फोन छोड़ दो सदा के लिए। छोटे अभी भी मिलते हैं ना, सस्ते मिलते होंगे अब क्योंकि कोई खरीदता नहीं है। मैंने कहा छोटा ही ले लो जिसमें नेट ना हो, और इस जीवन को अलौकिक बनाओ। उसने समझ लिया कितना भारी हुआ ये, उसका जीवन ही भारी हो गया। अभी है, मैंने कहा 1 मास खूब सेवा करो, यहाँ तो मानसिक पाप कर लिया है उसको धो के जाओ यहीं। सेवा करने से भी आत्मा को बहुत बल मिल जाता है। आज भी बाबा ने ये बात जोड़ी थी, जो बहुत मदद करते हैं मैं उन्हें बहुत प्यार से देखता हूँ, और इससे उन्हें बल मिल जाता है। भगवान देखेगा आत्मा को तो पावरफुल वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे हमें। तो सभी जो भी छोटे बड़े बैठे हैं इस नेट की गंदगी से बचेंगे। माताओं को तो आता नहीं होगा खोलना, लेकिन आजकल तो इसको ही लोग बुद्धिमत्ता समझते हैं ना, कि है तुमसे नेट खोलना भी नहीं आता, क्या पढ़े लिखे हो तुम तो बुद्धू हो, तुमको आता है दोनों बच्चों को नेट। नेट का दूसरा अर्थ भी होता है जाल, जंजाल भी है ये। इसलिए सोच समझ के लोगों ने नेट रख दिया, इंटरनेट को नेट बना दिया जाल। तो इस जाल में बहुत मछलियां फंस चुकी हैं, बहुत फंस गए हैं, बहुत युवक इसके कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत युवक इसके कारण सुसाइड कर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी फैला दी है। मैं सोचता हूँ कलयुग के अंत में विज्ञान की ये बड़ी बड़ी रिसर्च जो वरदान बनकर भी आई हैं, लेकिन कितना बड़ा नई पीढ़ी के लिए अभिशाप बन गई हैं। संयमित करेंगे इनका प्रयोग, सभी भाई बहने संयमित। हमारे पास भी है, मैं तो YouTube पे शाम को गीत बजाता हूँ बाबा के सुंदर सुंदर, योग में मजा तुमको निहारने को, कितना अच्छा गीत है। मुरली आ रही है एक, आप सुनेंगे उसका आनंद लेना। मैं आता हूँ तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, यही तो योग है। मजा आ जाएगा आपको, अभी 2-4 दिन में आ जाएगी। तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, तो ऐसा सदुपयोग भी किया जाता है। मैं तो सदुपयोग ही करता हूँ भाई, आज का पुरुषार्थ रिकॉर्ड कर दिया चला गया सबको, और कुछ रिकॉर्ड किया सबको चला गया, बस मुझे इतनी जानकारी, इससे ज्यादा नहीं। उसमें भी कहीं गड़बड़ हो जाती है तो रूपेश भाई को बुलाता हूँ, भाई ये तो चल ही नहीं रहा, देखो कहाँ गड़बड़ हो गई। इन सब चीजों में बुद्धि को ज्यादा भटकाना बुद्धिमानी नहीं है। तो हम बाबा के यज्ञ को सफल करने के लिए इसमें मददगार भी हैं, ड्यूटी नहीं। घर में ड्यूटी नहीं होती, या कहेंगे शाम को 8 बजे ड्यूटी खत्म हो गई, खाना बन गया, मेहमान आ गए 9 बजे, मेरी ड्यूटी खत्म, अब क्यों आए तुम, चाय नहीं मिलेगी, होगा ड्यूटी नहीं होती घरों में, ये यज्ञ हमारा अपना घर है, जरूरत पड़ने पर हम रात दिन सेवा करते हैं। अब तो बहुत भाई बहने सेवा करने के वाले हैं। मैं सोचा करता हूँ जब हम छोटे थे तो हम सबको दो दो घंटे रात को पहरा भी देना होता था। इवन विश्वतन दादा भी पहरा देते थे, कभी कभी कोई नहीं होता तो आनंद किशोर दादा भी पहरे पे आ जाते थे दो घंटे हमारे साथ। तो देखो वो समय था, लेकिन अब तो बड़ा है सब कुछ, अब उसकी जरूरत नहीं है। हम विशेष रूप से अपने वाइब्रेशंस फैलाकर यज्ञ को पावरफुल बनाएं। सबने सुन लिया है मुरली में, मधुबन का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अब वो दिन बहुत दूर नहीं, 2020 पूरा होने दो, जब यहाँ बहुत भीड़ लगेगी, ये मान तीर्थ प्रसिद्ध हो जाएगा। होगा या नहीं? कोई महान पुरुष स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी की पहाड़ी पर 3 दिन जाकर तपस्या की थी, वो सुंदर यादगार बना हुआ है। जब वो छोटा था ना, अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ था नाविक को, उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं, बस उस पहाड़ी तक मुझे भी ले चलो। नाविक ने मना किया। अब वो तो बहुत बहादुर था ना, 26-27-25 साल का था, कूद गया सागर में, तैरते हुए पहाड़ी पे पहुंच गया नाव वाले से पहले। वहीं रहा 3 दिन, तपस्या की। बहुत अच्छा उसका छोटा सा हॉल भी बना हुआ। तो 3 दिन एक स्वामी विवेकानंद जहाँ रहा, वो भी दर्शनीय स्थल बन गया। और जहाँ भगवान हजारों बार आए हों, बोलो क्या बनेगा वो? इसके तो दर्शन करके भी लोग अपने को भाग्यवान समझेंगे, आना भी मुश्किल हो जाएगा। कर्फ्यू लग गए, भूकंप हो गए, ट्रेन नहीं चल रही, बसें नहीं चल रही, ये भी होगा। केवल भाग्यवान लोग पहुंचेंगे, लेकिन भीड़ बहुत लगेगी। तो भीड़ लगेगी, हम सबको क्या करना होगा? बोलो चंद्रशेखर, क्या करना होगा? नहीं, इनको मकान देने की जरूरत नहीं। अब 50,000 आ गए, मकान की जरूरत नहीं। बाबा ने बताया हुआ, नीचे से चलेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, मधुबन चारों धाम की यात्रा करेंगे, थोड़ा प्रसाद ले जाएंगे, उसको ही सिर पे रखेंगे, आंखों पे, वापस जाएंगे। फाइनल दिन ये होंगे। उससे पहले बाबा ने कहा था एक रात रहेंगे, तब 3 जगह नहीं थी, तब तो एक ही जगह थी। याद है अटैची को तकिया बनाएंगे, पहाड़ियों को ये बिस्तर बन जाएंगे, सोएंगे। रात रात नहीं रहेगी, रात भी दिन हो जाएगी। इतने रोशनी करनी पड़ेगी, सरकारों को प्रबंध करने पड़ेंगे। तो वो समय आ रहे हैं, हमें क्या करना होगा? फिर सोचो, यहाँ बहुत लोग आएंगे, भगवान के कदम जहाँ पड़े वहां अपने कदम रखने एक बार अवश्य आएंगे। क्या करना होगा आप सबको? सेवादारियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। माता है ना, सोचो हमें नहीं आने दिया जाएगा, आपको आने दिया जाएगा। हमें उनको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देकर कल की मुरली से याद करूं, ये स्वमान सबको रखना है अपने पास। मैं शांति का सूर्य हूं, इस संकल्प में बैठेंगे, इस स्मृति में अंग अंग से शांति की किरणें फैल रही हैं, ऊपर से बाबा की आ रही हैं। ये काम हमें करने होंगे, ऐसा अनुभव होगा वहीं से जहां से सड़क ऊपर चढ़ती है ना, वहां पहुंचते ही लोगों को लगेगा शांति के कुंड में पहुंच रहे हैं, शीतलता का प्रवाह टच करने लगेगा उन्हें, चित शांत होने लगेंगे, टेंशन दूर हो जाएगी, एक सुखद फीलिंग, लंगड़े भी दौड़ने लगेंगे, वो सब होगा। अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। यही तो पहाड़ है वो, जिसमें लंगड़े चढ़ेंगे, पैदल ही चढ़ जाएंगे। तो हमको सबको अच्छे वाइब्रेशंस देकर, जैसे बाबा ने हमें नजर से निहाल किया है, हमें दूसरों को दृष्टि देकर उन्हें निहाल करना होगा। करेंगे ही। बाबा के अनेक बच्चे यहाँ जो अच्छी साधना कर रहे हैं, जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, जो संतुष्ट आत्मा बन गए हैं, जिनका चित प्रेम और सद्भावनाओं से भर गया है, वो दृष्टि देकर ही आने वालों को निहाल किया करेंगे। तो ऐसी बहुत बड़ी सेवा हम सबके सामने आ रही है। थोड़ा सा समय है तैयारी का, अब वो नहीं बहुत साल लगेंगे जो हम सब भी कहते थे। बाबा तो कहता ही रहता है जल्दी आ गया, समय आ गया, आया ही नहीं, लेकिन अब आ गया है। अब तो ये संसार मानसिक रोगों की तरफ बहुत बढ़ रहा है। अब संसार की स्थिति दयनीय होती जा रही, लोग जिंदे तो रहेंगे लेकिन जीवन का सुख खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी भाई बहनों को आने वाले समय के लिए अपने को तैयार भी करना है। माताओं के मुझे फोन आते हैं, मैं तो सारा दिन खोल नहीं पाता, खोलूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। आज भी दो फोन ऐसे आए, मैं सोचता हूँ बेचारी माताओं की भी स्थिति कैसी हो जाती है। एक लड़की जन्म से ही हार्ट पेशेंट, जन्म से ही 7 साल की हो गई है, हार्ट का ऑपरेशन भी कर दिया, चलना भी नहीं सीखा अब तक, डॉक्टरों ने कहा ब्रेन में भी कुछ गड़बड़ दिख रही है, पूरे परिवार का सारा सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूम रहा है लड़की के, सुख शांति खत्म। देखो कैसी स्थिति। तो इन सब चीजों को क्या करना होगा माताओं को, बोलो। मैं करण करावन हार भी हूं और साक्षी दृष्टा भी, कल की मुरली से। तो साक्षी का अर्थ होता है कि उस चीज का बुरा इफेक्ट अपने ऊपर ना आए, और साथ में सकास देंगे। मैंने उन्हें सिखाया, देखो बिना ज्ञान के वो माता शायद मुंबई की है, बहनों से उसने बात की, ज्ञान नहीं, उन्होंने मेरा नंबर दिया इनसे बात करो, उसने यूट्यूब पर प्रोग्राम देखे, मास्टर सर्वशक्तिवान याद करने लगी बिना ज्ञान के ही, बच्ची ने चलना शुरू कर दिया, बड़ी खुश हुई। अब तो मुझे मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, मुझे बता रही थी आज। तो हम सभी को बड़े बड़े कार्य करने हैं, और सभी भाई बहनों को आने वाली परिस्थितियों में अपनी स्थिति को अच्छल अडोल बनाने की प्लानिंग करनी है। परिस्थिति तो बढ़ेंगी, लेकिन उसी में अपनी उन्नति का मार्ग निकालना, इसे नहीं योग ही न लगे। लोग ढीले तो हो जाते हैं पर फिर बहुत कष्ट होता है। आज ऐसे ही 2-3 फोन आए, मैं 20 साल से ज्ञान में, 11 साल तो भाई जी बहुत अच्छी चली, 11 साल के बाद ढीली हो गई। मैंने कहा ढीली क्यों हुई, लड़की की शादी, फिर उसका बच्चा, उसको संभालने में, फिर लड़के की शादी, फिर उसका बच्चा। माताओं की कहानी है ना, मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा तुम न होती तो उनको कोई न संभालता, नहीं संभालते तो, पर मैंने ही संभाला है, अपना ज्ञान योग गया, अब 2 साल से फिर चली हूं ठीक। तो समस्या आ गई ना बहुत सारी। तो ये उलझने संसार में हैं, लेकिन किस किस को संभालोगे, अपने को संभालो, सब संभल जाएगा, आप ही संभल जाएगा। इसलिए बहुत समझदारी से अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। जो अपनी स्थिति को संभालना सीख जाते हैं वे सब कुछ सीख लेते हैं। तो चलेंगे, मैं शांति का सूर्य और ज्ञान सूर्य बाबा से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
भर लीजिए शांति से भरे।